एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरे वचन से भर दे, हमें तेरा बहुतायत का आशीष दे और तेरे राह में चला पिता, मेरे श्रोताओं के संग हो, उन्हें तू मदद कर तेरे वचनों को सुनकर बहुतायत से आशीष पाने के लिए, मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर की व्यवस्था का शाश्वतता और परमेश्वर की व्यवस्था का आज्ञा पालन। क्योंकि 10 आज्ञाओं की नैतिक व्यवस्था परमेश्वर के चरित्र का प्रतिबिंब है, इसके सिद्धांत अस्थायी या स्थितिपरक नहीं है, लेकिन मानवता के लिए पूर्ण अपरिवर्तनीय एवं स्थायी वैधता के हैं। शताब्दियों से मसीहों ने दृढ़ता से परमेश्वर की व्यवस्था की शाश्वतता का समर्थन किया है, इसकी निरंतर व्यवस्था की दृढ़ता से पुष्टि की है। सिनाई से पहले व्यवस्था थी, परमेश्वर का इज़राइल को 10 आज्ञाएं देने से बहुत पहले व्यवस्था अस्तित्व में थी। यदि नहीं होती तो सिनाई से पहले कोई पाप नहीं होता, क्योंकि पाप तो व्यवस्था का उल्लंघन है, कहता है 1 यूहन्ना 3:4। यह कि लूसीफर व उसके स्वर्गदूतों ने पाप किया, सृष्टि से पहले व्यवस्था की उपस्थिति का प्रमाण देता है। हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 2:4 में, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया, उसने उनके मनों में व्यवस्था के नैतिक सिद्धांतों को आरोपित कर दिया था, जिसने उसकी इच्छा को पूरा करना स्वाभाविक बना दिया। उनके अपराध ने मानव परिवार में पाप की शुरुआत की, रोमियो 5:12। इसके पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम के विषय कहा कि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, उत्पत्ति 26:4-5। और मूसा ने सिनाई से पूर्व परमेश्वर के अधिनियम और उसकी व्यवस्था को सिखाया, निर्गमन 16:18-16। उत्पत्ति की पुस्तक के अध्ययन से पता चलता है कि 10 आज्ञाओं का सिनाई से काफी पहले ज्ञान था। वह पुस्तक स्पष्ट करती है कि लोगों को एहसास था कि परमेश्वर द्वारा 10 आज्ञाएं दिए जाने से पूर्व इसके द्वारा मना किए गए कार्य गलत थे। नैतिक व्यवस्था की यह सामान्य समझ दर्शाती है कि परमेश्वर ने मानव जाति के लिए 10 आज्ञाओं का ज्ञान प्रदान किया होगा। सिनाई पर परमेश्वर ने व्यवस्था दी। मिस्र में गुलामी की लंबी अवधि के दौरान एक राष्ट्र जो सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानता था, निर्गमन 5:2, इसराइली मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार के बीच रहते थे, परिणाम स्वरूप उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता, शुद्धता एवं नैतिक सिद्धांतों को बहुत हद तक खो दिया था। दास की स्थिति ने उनके लिए आराधना करना कठिन बना दिया था। सहायता के लिए उनकी हताश पुकार के उत्तर देते हुए परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की गई अपनी वाचा को याद किया और इस लव भट्टी से अपने लोगों को निकालने का दृढ़ संकल्प किया, व्यवस्था 4:20 में हम पाते हैं। उन्हें एक ऐसे देश में लाकर जहां वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्थाओं को पूरी करें, भजन संहिता 105:43-45। उनकी स्वतंत्रता के पश्चात वह उन्हें सिनाई पर्वत पर ले गया ताकि वह उन्हें नैतिक व्यवस्था दे सके जो उसके शासन का मानक है, वह विधि व्यवस्थाएं जो उन्हें यह शिक्षा दे सके कि उद्धार का मार्ग उद्धारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान के माध्यम से है। सिनाई पर्वत पर फिर परमेश्वर ने व्यवस्था सीधे साफ और सरल शब्द में उन्हें दी। अपराधों के कारण गलातियों 3:19 और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे रोमियों 7:13। केवल परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था को गहन ध्यान में लाकर ही इजराइली अपने अपराधों के बारे में सचेत हो सकते थे, असहायता की भावना को खोज सकते थे और अपने उद्धार की आवश्यकता को जान सकते थे। मसीह के लौटने से पूर्व की व्यवस्था, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की व्यवस्था शैतान के आक्रमण का उद्देश्य है और यह कि इसके विरुद्ध उसका युद्ध दूसरे आगमन से ठीक पहले अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। भविष्यवाणी से संकेत मिलता है कि शैतान लोगों के विशाल बहुमत को परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए नेतृत्व करेगा। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:9 में, पशु शक्ति के माध्यम से काम करते हुए वह परमेश्वर के बजाय पशु की ओर दुनिया का ध्यान निर्देशित करेगा। प्रकाशित वाक्य 13:3 में हम यह देखते हैं, इसमें हम देखते हैं पहला व्यवस्था पर आक्रमण। दानियल 7 इसी शक्ति को छोटे सिंह के रूप में चित्रित करता है। यह अध्याय 4 महान पशुओं की बात करता है जिन्हें मसीह के समय के बाद से बाइबल के अधिकारों ने बाबुल, मादी, फारस, यूनान व रोम की विश्व शक्तियों के रूप में पहचाना है। चौथे पशु के 10 सिंह रोमी साम्राज्य के पतन के समय होने वाले विभाजन को दर्शाते हैं, ईस्वी सन 476। दानियल का दर्शन छोटे सिंह पर केंद्रित है। रोमी साम्राज्य के विघटन के पश्चात एक भयंकर व धर्मद्रोही शक्ति जो 10 सिंहों के बीच से उत्पन्न होती है, एक आश्चर्यजनक शक्ति के उदय को दर्शाती है। यही शक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगी। हम पढ़ते हैं दानियल 7:25 में, और मसीह के दोबारा आने तक जारी रहेगी। यह आक्रमण स्वयं ही उद्धार की योजना में व्यवस्था के निरंतर महत्व का प्रमाण है। दर्शन परमेश्वर के लोगों को आश्वस्त करते समाप्त होता है कि यह शक्ति व्यवस्था को खत्म करने में सफल नहीं होगी, क्योंकि न्याय छोटे सिंह को नष्ट कर देगा। पढ़िए दानियल 7:11 और दानियल 7:26-28। दूसरा है पवित्र लोग व्यवस्था की रक्षा करते हैं। आज्ञाकारिता उन पवित्र लोगों की विशेषता है जो दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम संघर्ष में वे परमेश्वर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। शास्त्र इन शब्दों में उनका वर्णन करता है, वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। प्रकाशित वाक्य 12:17 और प्रकाशित वाक्य 14:12 में हम यह पाते हैं, और धैर्य पूर्वक मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे आगमन की तैयारी में ये लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, दूसरों को प्रभु की सृष्टिकर्ता के रूप में आराधना करने के लिए बुलाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:6-7 में, जो लोग प्रेम से परमेश्वर की आराधना करते हैं उसकी आज्ञा को मानेंगे, जैसा कि यूहन्ना ने कहा था, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, 1 यूहन्ना 5:3। तीसरा है परमेश्वर का न्याय एवं व्यवस्था। अवज्ञाकारियों पर परमेश्वर के न्याय की अंतिम 7 विपत्तियों का आरंभ स्वर्ग में साक्षी के तंबू के मंदिर से हुआ। हम इसे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 15:5 में, इज़राइल इस वाक्यांश साक्षी के तंबू से भली भांति परिचित था। यह उस तंबू को नामित करता है जिसे मूसा ने बनाया था, गिनती 1:50-53 और 17:8 तथा 18:2। इसे यह इसलिए कहा जाता था क्योंकि तंबू में साक्षी पत्रक का संदूक रखा जाता था, निर्गमन 26:34, जिसमें साक्षी की 2 तख्तियां रखी थी, निर्गमन 31:18। इसलिए 10 आज्ञाएं ही वाचा के वचन हैं, मानवता के लिए दिव्य इच्छा के साक्षी। निर्गमन 34 का 28 और 29। लेकिन प्रकाशित वाक्य 15 का 5 में स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर को संदर्भित किया गया है। मूसा का तंबू उस स्वर्गीय मंदिर का एकमात्र एक प्रतिरूप था। निर्गमन 25 का 8 और 40, इसका आप तुलना कर सकते हैं इब्रानियों 8 का 1 से 5 में। 10 आज्ञा व्यवस्था की महान मूल वहां रखी गई है कि अंतिम न्याय घनिष्ठ रूप से परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित है, जो 10 आज्ञाओं की शाश्वतता के प्रमाण को बढ़ाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक स्वर्गीय मंदिर के खुलने को भी दर्शाती है, जिसमें उसकी वाचा का संदूक दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 11 का 9 वाक्यांश वाचा का संदूक पृथ्वी पर निवास स्थान के संदूक को नामित करता है, जिसमें वे तख्तियां रखी थी जिन पर वाचा के वचन 10 आज्ञाएं लिखी थी। निर्गमन 34 का 27 तुलना करें गिनती 10 का 33 से और व्यवस्था विवरण 9 का 9 से। स्वर्गीय पवित्र स्थान में वाचा का संदूक मूल संदूक है, जिसमें अनंत वाचा के वचन हैं, 10 मूल आज्ञाएं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दुनिया पर परमेश्वर द्वारा अंतिम न्याय का समय प्रकाशित वाक्य 11 का 18 इस स्वर्गीय मंदिर के खुलने से संबंधित है, जिसका केंद्र 10 आज्ञाओं के संदूक पर है। वास्तव में न्याय के मानक के रूप में परमेश्वर की व्यवस्था की महानता की एक उपयुक्त तस्वीर। लोग अपने अच्छे कामों के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, आज्ञा पालन ही मसीह में उद्धार का फल है। अपने अद्भुत अनुग्रह के माध्यम से विशेष रूप से क्रूस पर प्रदर्शित परमेश्वर ने अपने लोगों को पाप के दंड एवं श्राप से स्वतंत्र किया है। यद्यपि वे पापी थे, मसीह ने अपना जीवन देकर उनके लिए अनंत जीवन का वरदान दिया है। परमेश्वर का प्रचुर प्रेम एक पश्चातापी पापी में अनुग्रह की शक्ति से जो भरपूर मात्रा में प्रदान की गई है एक प्रतिक्रिया जागृत करता है, जो प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता में प्रकट होती है। विश्वासी जन जो यह समझते हैं कि मसीह व्यवस्था का आदर करता है एवं जो आज्ञा पालन की आशीषों को समझते हैं, मसीह समान जीवन जीने के लिए दृढ़ता से प्रेरित होंगे। मसीह एवं व्यवस्था किस तरह संबंधित हैं? 10 आज्ञा की व्यवस्था के लिए मसीह का सर्वोच्च सम्मान था। उस महान मैं हूं ने स्वयं ही सिनै पर्वत से पिता की नैतिक व्यवस्था की घोषणा की। यूहन्ना 8 का 58 निर्गमन 3 का 14 पृथ्वी पर उसके उद्देश्य का एक हिस्सा व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करना व उसे आदरणीय करना था। यशाया 42 का 21 के अनुसार भजन संहिता का एक अनुच्छेद जिसे नया नियम मसीह पर लागू करता है व्यवस्था के प्रति उसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है, कहता है भजन संहिता 40 का 8। तुलना करें इब्रानियों 10 अध्याय का 5 और 7 पद से। उसके सुसमाचार ने एक ऐसे विश्वास का निर्माण किया जो दृढ़ता से 10 आज्ञाओं की व्यवस्था को स्थिर बनाए रखता है। पौलुस ने पूछा, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। रोमियो 3 का 31। इसलिए मसीह न केवल मनुष्य को छुड़ाने के लिए आया, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अधिकार और पवित्रता को सही साबित करने, लोगों के समक्ष उसकी महिमा व भव्यता को प्रस्तुत करने और उससे किस प्रकार संबंध रखे उसका एक उदाहरण देने के लिए भी आया था। उसके अनुयायी होने के नाते मसीहों को अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को भव्य करने के लिए बुलाया जाता है। स्वयं एक प्रेममय आज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए मसीह ने जोर देकर कहा कि उसके अनुयायियों को आज्ञा पालन करने वाले होना चाहिए। अनंत जीवन के लिए आवश्यकताओं के बारे में पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, मत्ती 19:17। उसने इस सिद्धांत के उल्लंघन के खिलाफ भी चेतावनी दी, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, व्यवस्था तोड़ने वालों को प्रवेश से मना कर दिया जाएगा। मत्ती 7:21-23 में हम पढ़ते हैं, मसीह ने स्वयं व्यवस्था को पूर्ण किया, उसे नष्ट करके नहीं परंतु आज्ञाकारिता का जीवन जीने से। स्मरण रखो, उसने कहा कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मत्ती 5:18। मसीह ने दृढ़ता पूर्वक जोर देकर कहा कि परमेश्वर की व्यवस्था का उच्च उद्देश्य हमेशा मन में रखा जाना चाहिए। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:37-38। हालांकि वह चाहता था कि उसके अनुयायी एक दूसरे से उस प्रकार प्रेम ना रखे जिस प्रकार संसार प्रेम की व्याख्या करता है, स्वार्थी या भावनात्मक रूप से। जिस प्रेम के विषय में उसने कहा, उसे समझाने के लिए मसीह ने एक नई आज्ञा दी, यूहन्ना 13:34। इस नई आज्ञा को 10 आज्ञाओं का स्थान नहीं लेना था, परंतु विश्वासियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना था कि सच्चा निस्वार्थ प्रेम क्या है, ऐसा प्रेम जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया था। इस मायने में उसकी आज्ञा को नई आज्ञा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उसमें साधारणगत उसने उनको केवल यह नहीं कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, परंतु यह कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, यूहन्ना 15:12। सच कहे तो हमारे पास यहाँ एक और प्रमाण है कि किस प्रकार मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को सर्वोत्तम माना। आज्ञा पालन ऐसे प्रेम को प्रकट करता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, यूहन्ना 14:15। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, यूहन्ना 15:10। इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, 1 यूहन्ना 2:3। केवल मसीह में बने रहने से हम दिल से आज्ञाकारिता प्रदान कर सकते हैं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, उसने कहा, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यूहन्ना 15:4-5। मसीह में बने रहने के लिए हमें उसके साथ क्रूस पर चढ़ना होगा और उसका अनुभव करना होगा, जिसके विषय में पौलुस ने लिखा, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, गलातियों 2:20। वे लोग जो इस अवस्था में हैं, मसीह उनके लिए अपनी नई वाचा की प्रतिक्रिया को पूरा कर सकता है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे, इब्रानियों 8:10। शास्त्र घोषणा करता है, धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, भजन संहिता 119:1। जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, भजन संहिता 1:2। आज्ञा पालन की आशीषें अनेक हैं। 1, अंतर्दृष्टि और बुद्धिमता, भजन संहिता 119:98-99। दूसरा, शांति, भजन संहिता 119:165, यशायाह 48:18। तीसरा, धार्मिकता, व्यवस्था विवरण 6:25। चौथा, एक शुद्ध एवं नैतिक जीवन, नीति वचन 7:1-5। पांचवा, सत्य का ज्ञान, यूहन्ना 7:17। छठा, रोगों से बचाव, निर्गमन 15:26 और 7वां दीर्घायु नीति वचन 3:1-2 एवं आश्वासन की व्यक्ति विशेष की प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा 1 यूहन्ना 3:22। परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में बहुत सारे आशीष हैं। परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे तो हम आनंदित रहेंगे और अपना जीवन सफलवंत बनाएंगे। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अपने प्रेम के द्वारा हमें यह आज्ञा दिया है। आइए हम इस आज्ञा से प्रेम रखें और यीशु मसीह जैसा जीवन जिए कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर हम सबों का मदद करे और हमें उस स्वर्गीय राज के लिए ले जाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी उपासना करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इन सारे वचनों के लिए, तो हमें तेरा प्रेम का वचन दिया, आज्ञा दिया, हमें उसे मानने के लिए शक्ति दे, तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, और हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा उसका रास्ता में चलने के लिए
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।